translation. Shri Narad Muni said, "My dear King Yudhishthira, when Lord Vishnu in the form of Varaha the boar killed Hiranyaksha, Hiranyaksha's brother Hiranyakashipu was extremely angry and began to lament." Purport by Srila Prabhupada. Yudhishthira had inquired from Narad Muni why Hiranyakashipu was so envious of his own son Prahlad. Narad Muni began narrating the story by explaining how Hiranyakashipu had become a staunch enemy of Lord Vishnu.
ज्ञानविरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे कौरवाणीं प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्री नारद मुनि से श्रीमद् भागवतम कैंटो 7 चैप्टर 2 वर्स नंबर 1। Shri Narad Muni said, "My dear King Yudhishthira, when Lord Vishnu in the form of Varaha the boar killed Hiranyaksha, Hiranyaksha's brother Hiranyakashipu was extremely angry and began to lament." Get a good book stand, huh? This is not respectful for Bhagavatam. So, we will do 7th canto, Prahlad Maharaj Katha here. Sri Chaitanya Mahaprabhu would frequently go to hear Srimad Bhagavatam from Gadadhar Pandit in Jagannath Puri. And what he will hear? He heard 100 times Dhruva Maharaj Katha and 100 times Prahlad Maharaj Katha. So it's not that we only have to go to 10th canto and hear Krishna's Leela in Vrindavan. Everything in Bhagavatam is important, is effective for us. So we do Prahlad Maharaj Katha verse by verse. There's so many nice things in the learn. So Parikshit Maharaj, when he was hearing Srimad Bhagavatam, one thing he heard again and again, that Vishnu would fight against the Asuras and kill the Asuras and protect and help Indra, the demigods. In the whole history, not a single episode is there where in the fight between demigod and demons, Vishnu took the side of demons. Not a single. So Parikshit Maharaj asked Sukadeva Goswami that this looks partiality. Krishna is not envious. Krishna has no friend or enemy. Hindi mein karna hai? Nahi samjha hai Hindi bilkul.
Itna nahi samajh rahe.
तो भगवान तो किसी को ईर्ष्या नहीं करते हैं, किसी दोस्त दुश्मन नहीं है उनके लिए, उनको तो कुछ प्रॉफिट नहीं कमाना है, तो भी हमेशा इंदिरा का साइड देते हैं, क्या फायदा उनका? ये तो भेदभाव हो गया। भगवान तो कहते हैं कि हम आई एम इक्वल, हम सम हैं, हम सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं, सब मेरे पुत्र है, मैं सबका पिता हूँ, लेकिन ये तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो भेदभाव हो रहा है। इंद्र को हमेशा युद्ध में बचा रहे हैं और असुरों को मार रहे हैं। तो परीक्षित महाराज को ये प्रश्न आया, तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को पूछा। अभी परीक्षित महाराज इतने महान भक्त हैं, फिर भी ये संशय हुआ उनको। तो परीक्षित महाराज को असली में तो पता है कि भगवान भेदभाव नहीं करते, लेकिन उनके लीला से कोई ऐसा समझ सकता है, कोई जिसको कम ज्ञान है, तो उनके लिए ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ऐसे तो भगवान कृष्ण के लिए असंभव है भेदभाव करना। तो भगवान के लिए कुछ असंभव होता है? तो भगवान कैसे हुआ? तो भगवान नहीं हुआ वो। भगवान मतलब जो सब कुछ कर सके, अगर कुछ नहीं कर सके तो भगवान कैसे हुआ? कभी भी भगवान, ये हमारा फिलॉसफी है। तो वो भेदभाव उनके लिए असंभव है, वो भेदभाव नहीं कर रहे, लेकिन दिख रहा है कि वो कर रहे हैं। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछे, एक शिष्य का कर्तव्य है कि उसके मन में कोई संशय आ गए, कोई विचार आ गया जो उसको भक्ति में बाधा देता है या समझ में नहीं आता है भगवान के बारे में, तो अपने गुरु से विनम्रता से पूछना चाहिए। नहीं पूछेंगे तो पड़ा रहेगा अंदर, फिर वो असुर का रूप ले लेगा, भगवान के ऊपर विश्वास कम हो जाएगा। प्रश्न पूछना गलत नहीं है, संशय आना बुरा नहीं है, लेकिन संशय आने के बाद बिना समझ के निर्णय लेना वो गलत। तो परीक्षित महाराज एक शिष्य के हिसाब से अपने गुरु से पूछ लिया। तो सुखदेव गोस्वामी जब उत्तर देते हैं, उनको समझाते हैं, और साथ ही साथ एक बात और बताते हैं कि यही प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि को पूछा। जब राजसूया का यज्ञ हुआ था तो युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण का अग्र पूजा की। अग्र पूजा मतलब पहला पूजा, जो सभा में सबसे महान सबसे ऊंचा है उसका पूजा। तो उधर ब्रह्मा है, शिव है, बाकी देवता है, व्यासदेव हैं, भीष्म पितामह है, लेकिन फिर भी उन्होंने सबके सामने कृष्ण को महान समझा और उनकी पूजा किया। तो जब ये चल रहा था सब लोग तो खुश थे, लेकिन एक व्यक्ति था जो खुश नहीं था, वो था शिशुपाल। शिशुपाल हालांकि भगवान कृष्ण का कजिन भाई है, उनके बुआ का बेटा है, उनके पिता के बहन का बेटा है, फिर भी वो बहुत ईर्ष्यालु था। उसको ये बात पसंद नहीं आया कि कृष्ण का पूजा हो रहा है, कृष्ण का प्रशंसा हो रहा है, इसको ईर्ष्या कहते हैं। जब भगवान का अच्छा सेवा होता है और किसी को पसंद नहीं आता है उसको ईर्ष्या कहते हैं। कोई कहता है बहुत बड़ा मार्बल मंदिर बना दिया राधा रास बिहारी के लिए, इसके बदले गरीबों को खिलाओ, ये ईर्ष्यालु व्यक्ति, खुद को चाहिए नहीं मिल रहा है तो भगवान पे उंगली उठाते हैं, क्यों इतना अभिषेक कर रहे हैं, क्यों इतना फूल, क्यों इतना सजा रहे हैं, क्यों इतना महंगा पोशाक। बोलने का मतलब क्या है कि मुझे दे दो, उसको क्यों दे रहे हैं। तो ये ईर्ष्या है, किसी की प्रशंसा हो रही है, किसी को आदर मिल रहा है और हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ये ईर्ष्या है। किसी साधु को गार्लैंड मिलता है, दंडवत प्रणाम मिलता है, स्पेशल महाप्रसाद मिलता है, स्वीट्स मिलता है, अच्छा सुविधा मिलता है और हमको पसंद नहीं आ रहा है तो ये ईर्ष्या। तो शिशुपाल को पसंद नहीं आया कि इसकी पूजा हो रही है, तो वो खड़ा होकर बहुत गाली दिया भगवान को, बहुत अपमान किया, और भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से मार दिया। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन उसके बाद उसको मुक्ति मिली। तो महाराज बोले ये क्या बात है, जिसने बचपन से कुछ भक्ति नहीं किया, बचपन से सिर्फ भगवान को गाली दिया, उसको नरक में जाना चाहिए, उसको मुक्ति मिल गई। एक था किंग वेन, राजा वेन, उसने भी भगवान को गाली दिया था, एक दो गाली दिया था ब्राह्मणों के सामने, ब्राह्मण ने तुरंत उसको मार दिया और नरक चला गया। और शास्त्रों में लिखा है जो अपने जबान से भगवान का अपमान करता है उसका जबान काट देना चाहिए, उसको लेप्रसी हो जाता है, उसको ऐसा बीमारी हो जाता है कि बहुत तकलीफ होता है और मृत्यु होता है उसका। लेकिन शिशुपाल तो एकदम हट्टा कट्टा था, जिंदगी भर कोई डिजीज कोई बीमारी नहीं, रोज भगवान को गाली देता था फिर भी हट्टा कट्टा, कुछ सजा नहीं उसको। तो ये क्या है, युधिष्ठिर महाराज पूछे नारद मुनि से, ये कैसा भेदभाव। तो नारद मुनि उनको बताया है कि इसके पीछे अंदर की बात है, एक कहानी है, कहानी है जय और विजय की। जय और विजय भगवान नारायण के पार्षद हैं, पार्षद मतलब एसोसिएट्स, उनके साथ रहते हैं। जब भक्त भक्ति करके 100% परफेक्ट हो जाता है उसको मुक्ति मिलती है, 5 प्रकार का मुक्ति संभव है। पता है किसी को 5 प्रकार का मुक्ति? नहीं, हाँ, सायुज्य मुक्ति,
सारूप्य,
सारूप्य, सालोक्य,
सिंधुक,
सामिप्य, सृष्टि, 5 प्रकार का मुक्ति है। सारूप्य रूप, ऐसा ही रूप मिलता है जैसे भगवान का रूप है, मतलब 4 हाथ, श्याम काला शरीर, भगवान जैसा। फर्क सब इतना होता है कि भगवान के छाती पे एक श्रीवत्स है, एक गोल्डन हेयर है, वो नहीं होता है, वो भक्त को नहीं मिलता है। बाकी से उसको कहते हैं सारूप्य, सारूप्य मुक्ति वैकुंठ लोक में, इधर से मरकर वैकुंठ लोक में जाकर भगवान जैसा रूप मिलता है, सारूप्य। दूसरा है सालोक्य, सालोक्य मतलब लोक, सलोक सेम लोक, जिस लोक में भगवान वास कर रहे हैं उसी लोक में वास। तीसरा है सामिप्य, सामिप्य मतलब करीब, भगवान के करीब रहना, वैकुंठ लोक में भगवान के साथ रहना। चौथा है श्राष्टि, श्राष्टि मतलब जो ऐश्वर्य भगवान को मिलता है वही भक्त को मिलता है, वही धन, वही सिद्धि, वही सुंदरता, श्राष्टि। और पांचवा है सायुज्य, ये वैष्णव लोगों को पसंद नहीं है, सायुज्य में भगवान से एक हो जाता है, उनके ब्रह्म ज्योति से हमारा जो आत्मा है वो मिक्स हो जाता है। तो ये 5 प्रकार का मुक्ति है, इसमें सायुज्य को असली मुक्ति नहीं बोलते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति ब्रह्मलीन हो जाता है, कभी पढ़ा है ब्रह्मलीन, न्यूज़पेपर में आता है सो एंड सो व्यक्ति ब्रह्मलीन, पता है ब्रह्मलीन क्यों लिखते हैं? नरकीय लिखना अच्छा नहीं लगता है इसके ब्रह्मलीन अच्छा लगेगा नरकीय लिखा इसके स्वर्गवासी ब्रह्मलीन ऐसा लिखा तो ब्रह्मलीन असली ब्रह्मलीन मतलब भगवान के साथ एक हो गए जो असली में हो नहीं सकते हम दो हैं भगवान और हम ये दो कभी एक नहीं हो सकता कोई तो खिचड़ी नहीं है जो मिक्स हो जाएगा तो करोड़ों करोड़ों सालों बाद ऐसा आत्मा जो पैसिव हो गया है ब्रह्मलीन हो गया है वो वापस पृथ्वी पर आ गया तो ये असली मुक्ति नहीं है और क्या फायदा ब्रह्मलीन का कुछ एक्टिविटी नहीं उधर कुछ जप नहीं कर सकते कुछ कीर्तन नहीं कर सकते डांस नहीं कर सकते भागवत कथा नहीं कर सकते प्रसाद नहीं खा सकते क्या फायदा भगवान इतना इतने अच्छे हैं उनके साथ एक क्या हो जाना उनके साथ रहकर वो अच्छा अनुभव करो ना अभी आपको रसगुल्ला दिया तो आपकी क्या इच्छा होगी रसगुल्ला को खाना या एक हो जाना रसगुल्ला एक हो जाओ रसगुल्ला से उसके अंदर एक हो जाओ बैठ जाओ ये क्या मतलब इसका कुछ मतलब तो सायुज वंशों को पसंद नहीं तो जो वैकुंठवासी है वो मुक्त है जय विजय पार्षद है भगवान उनके साथ रहते हैं और उनका सेवा है भगवान के वैकुंठ में जो दरवाजा है उसके गार्ड है सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते हैं तो एक बार चार कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र जो हालांकि आयु में बड़े हैं लेकिन खुद को 5 साल के शरीर में ही रखे अपने शक्ति से खुद को 5 साल के ऊपर ग्रो नहीं किया शरीर को छोटा ही रखा और पक्के ब्रह्मचारी तो वो चार कुमार बच्चों के रूप में नी वस्त्र बिना कपड़े के गए वैकुंठ में नारायण से मिलने के लिए और जय विजय ने रोक दिया बोला चार नंगे लड़के आ गए रोक दिया तो चार कुमार गुस्सा हो गए कि आप दोनों लायक नहीं है इधर के रोक दिया हमको उनको श्राप दिया कि आप लोग पृथ्वी पर जमा लेंगे रजोगुण तमोगुण में भगवान के खिलाफ असुर बन जाओ तीन वर्ण तीन जन्म तो वही बने हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष पहले बर्थ में रावण और कुंभकर्ण दूसरे जन्म में और शिशुपाल और दंतवक्र तीसरे जन्म नारद मुनि जी से महाराज को बताया कि शिशुपाल कोई साधारण व्यक्ति नहीं था वो तो भगवान का पार्षद था जो ईर्ष्या की भाव से चार कुमारों के श्राप से किधर आया तो युधिष्ठिर महाराज को फिर भी एक प्रश्न हुआ कि ये हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रह्लाद को इतना क्या मारा और क्यों मारा ये कोई साधारण बात नहीं है कि इतना बड़ा राजा इतना शक्तिशाली राजा हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को मारने का प्रयास किया कोई पिता अपने पुत्र को अगर जान से मारने का प्रयास करेगा और आप ये बात सुनेंगे तो शॉक नहीं हो जाएगा होगा कलयुग में भी कलयुग में भी होगा शॉक नहीं होगा हाँ जब तक है होगा कहीं भी शॉक होगा कौन करता है ऐसा अपने बच्चे को कौन मारता है तो ये सत्युग के बाद एंड की बात है तभी हुआ ये सत्युग के बीच कि हिरण्यकशिपु और वो साधारण पिता नहीं राजा पूरे ब्रह्मांड का राजा तीनों दुनिया का राजा लगभग इंद्र के सिंहासन पे बैठा है जिसे इंद्रा डरता है, इंद्र चंद्रा ऐसे खड़े रहते हाथ जोड़कर हिरण्यकशिपु के दरबार में, को सेवा हो तो बताइए। गंधर्व लोग जो म्यूजिशियंस हैं वो पालकी उठाते थे हिरण्यकशिपु, और इधर को बाथरूम जाने का तो पालकी में क्या करना है, वो लेके जाते या इधर उधर कहीं जाना है। बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर हिरण्यकशिपु को प्रार्थना करते थे, जैसे भगवान को ब्रह्म संहिता प्रार्थना करते हैं, ईश्वर आप परम हिरण्यकशिपु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बहुत शक्तिशाली था। इतना शक्तिशाली व्यक्ति जिसे देवता लोग घबराते हैं, वो अपने बेटे को मार रहा है। कोई साधारण व्यक्ति अपने बेटे को मार रहा है तो भी हमको शॉक लगता है। अभी इतना बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति अपने 5 साल के छोटे बेटे, 5 साल का बेटा क्या गलती करेगा कि उसको एक राजा एम्परर मारेगा, शॉक होता है। इससे बड़ा शॉक ये लगा, लेकिन फेल हो गया, मार नहीं पाए। मार क्यों नहीं पाया उसको? अब इसमें क्या है, एक बेटे को, एक छोटे बच्चे को मारना है, लेकिन फेल हो गया, मार नहीं पाया। तो युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से पूछे, देखिए राजसूय यज्ञ हुआ, कितने गेस्ट आए होंगे, कितना अरेंजमेंट होगा, कितने बिजी होंगे युधिष्ठिर महाराज, और खुद यज्ञ में बैठकर उन्होंने भाग भी लिया, ब्राह्मणों ने मंत्र जप किया, कितने बिजी हैं, और उसी बीच में कृष्ण का पूजा किया यज्ञ के शुरू में, और उसी समय शिशुपाल की हत्या हुई। यज्ञ के प्रोग्राम में हजारों लाखों गेस्ट के सामने एक रिश्तेदार की हत्या हो जाती है, क्या करेंगे आदमी? इतना व्यस्त है और ये सब कांड हो गया, स्कैंडल हो गया, और युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से बैठ कर ये कथा सुन रहे हैं। भगवान के बारे में सुनना इतना जरूरी है। एक अगर साधु से मुलाकात हो गया तो बहुत भाग्यशाली है, लेकिन अगर प्रश्न नहीं पूछा तो वेस्ट गया, या सेवा नहीं किया या सुना नहीं कुछ, तो वो संग क्या करेंगे? चलो सर, देखना भी अच्छी बात है, सर देखने से भी पाप धुल जाते हैं, लेकिन अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो रिश्ता होना चाहिए परी प्रश्न है ना सेवाया, प्रश्न पूछना चाहिए और सेवा करना चाहिए, उसमें भी सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। श्री प्रभुपाद जी अपने जीवन कहानी में कहते हैं कि पूरा जिंदगी मैंने अपने गुरु महाराज से एक ही प्रश्न पूछा, एक ही प्रश्न, क्या?
How will foreigners accept? First question.
How can I serve you? यही प्रश्न पूछा। वो जो आप बोल रहे हैं ना, वो प्रभुपाद ने आर्ग्यूमेंट दिया था, सबमिसिव इंक्वायरी नहीं किया था कि ये मुझे समझाने की कोशिश, मैं समझने की कोशिश करूं, वो आर्ग्यूमेंट दिया था कि कौन हमारा सुनेगा, वो प्रश्न नहीं था, पूछ नहीं रहे थे कौन सुनेगा, लिस्ट बताओ। उस वक्त तो प्रभुपाद हार गए, उसके एक ही प्रश्न पूछा, हाउ कैन आई सर्व। रूपा जी अपने जीवन से सिखा रहे हैं हमें सेवा बहुत जरूरी है, इंक्वायरीज बहुत जरूरी है। तो युधिष्ठिर महाराज सब गेस्ट हैं, ये है वो है, और नारद मुनि से प्रश्न पूछा, और सब लोग सुन रहे हैं इसका उत्तर, बोल नहीं रहे अरे टाइम हो गया इतना जल्दी करो, इतने दूर से आए हम, यज्ञ पूरा करो, यज्ञ के लिए आए हम, यज्ञ के बाद फीस्ट होगा, ये बीच में कहाँ प्रोग्राम शेड्यूल चेंज कर दिया, क्योंकि जो प्रोग्राम शेड्यूल था उसमें अग्र पूजा था लेकिन शिशुपाल का हत्या नहीं था और ये प्रश्न उत्तर नहीं था क्योंकि प्रश्न उत्तर तो हत्या के बाद हुआ। ये तो प्रोग्राम चेंज कर दिया शेड्यूल, हम लोग पसंद है ऑन द स्पॉट आखिरी टाइम प्रोग्राम चेंज कर। तो ये युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से पूछ, सुनना इतना जरूरी है। और युधिष्ठिर महाराज ऐसा नहीं मालूम है, युधिष्ठिर आपको लगता है जय विजय कहानी कभी नहीं सुना होगा, नहीं मालूम है, ऐसा नहीं है। Right? बोले नारद, ये तो कहानी मुझे मालूम है। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ ओके ओके याद आया, बैठ के सुन रहे हैं पूरा सेवन कैंप को सुना होगा। तो प्रहलाद महाराज को मालूम है, ऐसा नहीं है नहीं मालूम, फिर भी सुना होगा। तो प्रश्न पूछने से सुनने को मिलता है, अमृत रहता है इसमें। राइट, कोई रसगुल्ला बांट रहा, हम थोड़ी बोले यार पिछले टाइम खाया था तो वापस खाएंगे, तो गलती से वापस आ गया, आपने लिया क्या?
नहीं,
हाथ वाला देंगे, दूसरा भी लेंगे। ये भी वही है, ये भी मिठाई है, ये भी अमृत है। भागवत में कोई बोर नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति हो, खुद कितना भी बड़ा बोर हो, भागवत से बोर नहीं हो। तो युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से प्रश्न किए कि क्या हुआ, अपने बेटे को क्यों मार रहा था वो? कभी पिता बेटा को नहीं मारता है, और इतना बड़ा राजा क्यों मार रहा है? तो नारद मुनि ने ये कथा बोलना आरंभ की, कहा कि हिरण्याक्ष उसका भाई है हिरण्यकश्यपु का, हिरण्याक्ष इसको वरा ने मारा। हिरण्याक्ष इतना शक्तिशाली था कि अकेला एक गदा लेकर पूरा दुनिया का चक्कर मारा और हर एक से एक ही बात बोलता था कि मुझसे युद्ध करो, और हरा देता था लोगों को अकेला, कितनी भी बड़ी सेना। आखिर कोई उसे युद्ध करने को तैयार ही नहीं हुआ, कोई तैयार नहीं, सबको हम हार जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा का वरदान था उसको, बहुत बड़ा शरीर था उसका, आसमान को छूता था उसका शरीर, और इतना चौड़ा कि सूरज ढक जाता था। कहते उसका बॉडी जो था स्टील की तरह था, स्टील की तरह, स्टील फ्रेम, और सब शक्तियां और सिद्धियां थी उसको। तो आखिर वो पानी में गया, पानी में वरुण देव से मिला, वरुण देव को पूरा दंडवत प्रणाम किया। वरुण देव बोले भाई क्या बात है, बोला मैं आपसे भीख मांगने आया हूं। तो क्या चाहिए? तो युद्ध चाहिए। देखो इतना उसके हाथ में खुजली हो रहा है कि वो भीख मांग रहा है, भाई युद्ध करो। वरुण देव बोला देखो मैं रिटायर हो गया, देखो नहीं इच्छा है, मैं बूढ़ा हो गया, मेरे में इतना शक्ति नहीं है। ये असुर लोग होते हैं, उनको फाइट करना अच्छा लगता है, और हम लोग उनसे फाइट उलझ जाए ना, हमको लगता है हम धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन वो मजा ले रहे हैं।
अच्छा।
किसी आर्गुमेंट हो जाए, कभी होता है ना फालतू वाद विवाद हो जाता है ट्रेन में, सड़क पर, घर पर, या चैट पे, या ईमेल पे, हमको लगता है कि हम किसी के जिज्ञासा का उत्तर दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो हमको परेशान कर रहा है और मजा ले रहे हैं। टाइम पास कर रहे हैं। असुर लोगों को ये सब अच्छा लगता है। अगर आप सुअर के साथ झगड़ा कर रहे हैं गटर में, दोनों का सेम हालत नहीं है, वो तो मजा ले रहा है, उनको अच्छा लगता है गटर में, राइट? दोनों का हालत सेम नहीं है। असुरों को झगड़ा करना अच्छा लगता है, फालतू वाद विवाद करना अच्छा लगता है, परेशान करना अच्छा लगता है, उनको मजा आता है। तो हमें मालूम होना चाहिए हम किससे डील कर रहे हैं। किसी का इंद्र तुप्ति हो रहा है झगड़े में, उसके साथ कुछ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। तो वरुण देव को कहा उसने, और वरुण देव ने कहा भाई मुझे तो नहीं इंटरेस्ट। फिर वो घूमने लगा, ढूंढने लगा, भाई कोई तो मिले। और उसको मिले नारद मुनि। उन्होंने नारद मुनि, नारद को देख के ही शांत हो गए। ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी को देख के आदमी शांत हो जाता है। नारद मुनि को उसने पूछा कि भाई कोई मिल नहीं रहा है, कोई है? उनको लग रहा था कोई है ही नहीं लायक, कोई है मेरे लायक युद्ध करने के लायक? नारद का एक है, इधर ही है पानी में, भरा नाम है उसका, उसके साथ युद्ध करो, कुत्ते की मौत मारो। एक्चुअली बोला कुत्ते की मौत मारो। हिरण्यकश्यप खुश हो
गया। अच्छा
वो जो कुत्ते की मौत मारा ना, उसको सीरियसली नहीं लिया, कोई है। क्योंकि हिरण्यकश्यप क्या लग रहा था, मुझे कोई मार नहीं सकता, ब्रह्मा का वरदान है मुझे। ये नारद मुनि का कैलकुलेशन गलत है। नारद मुनि उसको कहा कि विल किल यू डॉग्स डेथ। अरे अच्छा खुश हो गया, कोई तो है, कोई तो है। और गया ढूंढने के लिए और देखा भरा देव को, जो पिग सुअर सुकर के रूप में आए थे। तो वो हंसा और गाली मारा, बोला ये सुअर एम्फीबियस बीस्ट। लेकिन भगवान इंटरेस्ट नहीं लिया उससे युद्ध करने, क्योंकि भगवान पृथ्वी को बचाने आए, युद्ध करने नहीं आए। भगवान पृथ्वी को लेकर चले गए, ये इनके पीछे दौड़ा और बहुत कड़वा बात किया, बहुत गाली मारा भगवान को, बहुत भगवान का हृदय दुखाया। लेकिन भगवान फिर भी अब पृथ्वी को बचाया गया। वन गोचर हिरण्यकश्यप ने भगवान को क्या कहा, वन गोचर। वन गोचर मतलब जंगली, वन मतलब जंगल, गोचर मतलब रहना या घूमना, पूरा जंगल में रहता है। मतलब बोल रहा था मैं महलों में रहता हूँ, आप जंगल में रहता है। वन गोचर जंगल में रहता है, सूंघ के खाता है। भगवान को बहुत तकलीफ हुआ। भगवान पत्थर नहीं है, कुछ भी बोल दो और उनको कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ा। हमको लगता है ऐसा, भगवान या साधु पत्थर है, कुछ भी बोल दो कुछ भी चलता है। नहीं, किसी को कड़वा बोलेगा भगवान को तो दर्द होगा। लेकिन फिर भी भगवान अपना कर्तव्य किए, पृथ्वी को जाकर सुरक्षित रख दिए। फिर मुड़े भगवान, फिर उनको जवाब दिया, बोला हाँ मैं वनगोचर है, मैं जंगल में आया हूँ। क्यों आया हूँ? शिकार करने के लिए, तेरे जैसे कुत्ते को मारने के लिए। भगवान भी डॉग शब्द इस्तेमाल किए होते, तो कुत्ता बोला। और दोनों में बहुत घमासान युद्ध हुआ, बहुत घमासान। इसमें भगवान टाइम पास कर रहे थे। फिर आखिर ब्रह्मा जी ने भगवान को कहा बस हो गया, मत खेलो, मार दो, अंधेरा होने वाला है, अंधेरे में इसका शक्ति बढ़ जाएगा। भगवान ने कैसा मारा, कर्ण मूले कान के नीचे झापड़ दिया है। सीरियसली भगवान इधर झापड़ मारा, उसको इतना जोर से झापड़ मारा, गोल 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 घूम के गिर गया। मरा कब? गोल घूमने के टाइम। सेंट्रीपेटल फोर्स सुना है? आत्मा निकल गया, मार दिया भगवान, एक छापड़ से मारा उसको। मारेगा भगवान उसके ऊपर पैर रखकर खड़े हो गए। इतना बड़ा अचीवमेंट किया भगवान। ब्रह्मा जी खुश, पृथ्वी माता खुश, शिव जी खुश, इंद्रा खुश, वरुण खुश, नारद मुनि खुश, सब देवता खुश। नगरीय समाचार गया हिरण्यकश्यप के पास, कि विष्णु ने वेश बदल करके मेरे भाई को मारा, वो बहुत गुस्सा हो गया और बहुत दुखी भी हो गया, एंगर एंड लैमेंटेशन। जब हमारा इच्छा पूरा नहीं होता तो गुस्सा हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और ये बहुत खतरनाक चीज है। काम क्रोध, काम पूरा हो गया तो लोभ बन जाता, पूरा नहीं हुआ तो क्रोध बन जाता। मेरा काम आपके सामने पूरा हुआ तो गर्व आ जाता, मेरे सामने आपका इच्छा पूरा हुआ तो ईर्ष्या हो जाती। ये सब काम से आता है और आदमी इल्यूजन में पड़ जाता है, फंस जाता है। काम से क्रोध आता है, लोभ आता है, ईर्ष्या आता है, गर्व और एक बार क्रोध आ गया तो आदमी कंट्रोल में नहीं रहता, बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वो गलत शब्द बोल देता है, ऊंची आवाज में बात करता है, अनादर करता है, या किसी को मारता है, वायलेंट हो जाता है, या गलत SMS भेज देता है, चैट पे कुछ लिख देता है, फिर सॉरी सॉरी करता है, या मोबाइल तोड़ देता है, पता है ऐसा। ये सब फ्रस्ट्रेशन होता है, सात्विक नहीं है ये, तामसिक। काम राजसिक है, क्रोध तामसिक। काम से आदमी फंसता है, क्रोध से डबल फंसता है। जब विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे तो उनकी तपस्या भंग करने के लिए इंद्रा ने मेनका को भेजा और विश्वामित्र आकर्षित हो गए और शकुंतला पैदा हो गई। तो विश्वामित्र फंस गए काम के। तो जब उनको समझा तो वापस तपस्या करने चालू किए, बोले नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। इंद्र वापस रंभा को भेजा, विश्वामित्र बिल्कुल आकर्षित नहीं हुए, रंभा को श्राप दे दिया गुस्से में, उसको पत्थर बना दिया, लेकिन तपस्या फिर भी गया। क्यों? क्रोध था, फिर भी विनाश हो। तो काम जब पूरा नहीं होता है तो क्रोध हो जाता है और क्रोध में हमेशा हम गलत निर्णय लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, काम क्रोध लोभ क्या है? ये रॉयल पाथ टू हेल, सुपर एक्सप्रेस हाईवे, स्ट्रेट हेल, नो टोल टैक्स, नो ट्रैफिक, नो स्पीड ब्रेकर, नरक के द्वार। भारत कोई भी पाप होता है, क्रिमिनल एक्टिविटी होता है, न्यूज़पेपर में आता है, उसके पीछे देखो या तो काम रहेगा, ये क्रोध रहेगा, ईर्ष्या या लोभ। रेप क्यों होता है? काम के कारण। मर्डर क्यों होता है? क्रोध के कारण। फ्रॉड क्यों होता है? ग्रीड के कारण। सब पापों के पीछे यही है, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या, यही है सब पापों के पीछे। तो हमें इनसे दूर रहना है, इसको अनर्थ कहते हैं। अनर्थ, अनर्थ मतलब जो अनवांटेड है, जरूरत नहीं है जिसको, जो भरा पड़ा है हमें, लेकिन साफ करना है उसको। अगर हम काम क्रोध लोभ द्वेष से बाहर नहीं आ पाए तो हमारा नेक्स्ट जन्म पक्का है, रिजर्व, कंफर्म टिकट। इससे हमें दूर आना है, इसलिए बहुत सात्विक जीवन जीना चाहिए, सादा जीवन जीना चाहिए, शुद्ध भक्तों की सेवा करना चाहिए और अच्छा साधना और पढ़ाई करना चाहिए, जिससे हमारा सात्विकता बना रहता है। काम क्रोध लोभ हमको सताते नहीं, और अगर तो भी गुस्सा आ रहा है तो जगह छोड़ देना चाहिए, गुस्से में निर्णय नहीं लेना चाहिए या वो बातचीत कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस गुस्सा से हमारा अक्ल बंद हो जाता है। एज सून एज गुस्सा आ गया, इंटेलिजेंट टर्न ऑफ हो जाता है, ये सिस्टम में अंदर। होता है ना, ब्रेक सर्किट होता है, क्या होता है कुछ तो बड़ा था मतलब उसका क्या होता है कुछ तो हो गया तो ब्रेक हो जाता है सर्किट। हाँ तो ब्रेक करेक्शन उसी तरह जब एंगर आ जाता है तो इंटेलिजेंस करेक्शन डिस्करेक्ट हो जाता है। सुना है गुस्सा अकल को खा जाता है, वही बात है शास्त्र में लिखा है गुस्सा अकल को काट लेता है। अकल का इस्तेमाल होता है सही और गलत के पहचान के लिए, जब आदमी में गुस्सा आ जाता है तो ये फेल हो जाता है, सही गलत नहीं पहचान सकता, वो गलत को सही समझ के कार्य करता है। गुस्से में आदमी कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर देता है, तो गुस्से में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, दूर रहना चाहिए, शांत से काम करना चाहिए। आपके जिंदगी में अगर आपने कभी गुस्सा किया है तो याद करो फायदा हुआ कुछ, जिस कारण से गुस्सा किया वो कारण पूरा हुआ, काम हुआ नहीं, फेल हो गया। तो बुद्धिमान व्यक्ति अनुभव से सीखता है कि इतना बार मैं जिंदगी में गुस्सा किया फायदा ही नहीं हुआ तो अगले टाइम नहीं करूँ, और आए तो छोड़ दूँ जगह, गुस्से से कुछ फायदा नहीं होगा। वही बात शांति से बैठकर करेंगे तो हल हो जाएगा, तो गुस्से से काम नहीं लेना चाहिए। हिरण्यकशिपु बहुत गुस्सा हो गया जब अपने भाई का मृत्यु का बात सुना तो बहुत गुस्सा हो गया, और उस गुस्से में उसने विष्णु को अपना नंबर वन एनिमी बनाया, विष्णु को अपना दुश्मन समझा और निर्णय लिया कि मैं उसको खत्म कर दूँ, और बहुत दुखी भी हो क्योंकि हिरण्याक्ष उसका भाई था, उसके जैसा ही था असुर और हर बात उसकी मानता, जो भी हिरण्यकशिपु बोलते थे हिरण्यकशिपु बोलते थे यस सर, इसका मर्डर करना है ओके, इसकी हत्या करना है ओके, इसका चोरी करना है ओके, इस पर आक्रमण करना है ओके, कोई मना नहीं करता। हिरण्यकशिपु का जितना आसुरिक प्रवृत्ति था ना हिरण्यकश का उससे ज्यादा था, हिरण्यकशिपु तो भी युद्ध करने के बाद थोड़ा बहुत सोच समझता था, हिरण्यकशिपु कभी कभी युद्ध करता था किसी कारण से, हिरण्यकश युद्ध करता था बिना कारण से कॉजलेस ऐसे ही जाकर युद्ध करता था, लोगों से उकसाता था, एक कदम आगे ही था वो। तो हिरण्यकशिपु को इतना प्रेम था, आसक्ति था, तो मर गया तो विष्णु पे गुस्सा और बहुत दुखी हो गया, विष्णु को अपना दुश्मन समझा। अगर कोई वस्तु आप पसंद करता है और वो मैंने ले लिया तो गुस्सा आएगा और मुझे आप अपना दुश्मन समझेगा, ये आसक्ति का तरीका होता है, हर जीव को आसक्ति होता है, आसक्ति मतलब अटैचमेंट। क्यों अटैचमेंट रहता है, क्योंकि आशा रहती है कि ये वस्तु से मुझे इंद्रिय तृप्ति मिलेगी, खुशी मिलेगी, इस आशा से हमको आसक्ति हो। अभी कोई ग्लास है या मोबाइल है, क्यों आसक्ति है हमें, क्योंकि इससे हमको कुछ फायदा होगा। जिस दिन हमको मालूम है इससे फायदा नहीं होने वाला है उसी दिन उसको पटा के फेंक दें, आसक्ति खत्म हो जाए, फिर भी नहीं रखेंगे, तो मालूम है फायदा नहीं होने वाला। तो आसक्ति रहता है क्योंकि आशा रहती है कि इस वस्तु से या इस व्यक्ति से मुझे कुछ लाभ होगा, मुझे कुछ खुशी होगी, और ये आसक्ति जब तक रहती है तब तक व्यक्ति भगवान के धाम नहीं जा सकता। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं पांच प्रकार का आसक्ति, पता है किसी को पांच प्रकार का आसक्ति? पहला है शरीर, हमारा शरीर के प्रति आसक्ति, इतना आसक्ति है कि हम खुद को शरीर समझते हैं, हालांकि हम शरीर नहीं है लेकिन हम खुद को समझते हैं। कोई हमको पूछा तो हम बोलते हैं मैं ऐसा ऐसा हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं बोलता मैं आत्मा हूँ, भगवान का सेवक, आई एम अ बॉय। सबको लग रहा है इधर आए बॉय, ये आसक्ति है। सोल इज नॉट बॉय और गर्ल, लेकिन हम शरीर के अंदर है। शरीर इज मेल, लेकिन हमको लगता है आई एम मेल। शरीर इज बॉय, हमको लगता है आई एम बॉय। और ये बचपन में ही सिखाया जाता है। स्कूल में लिखते माय सेल्फ, पहला ऐसे लिखते हैं माय सेल्फ आई एम अ बॉय स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 5A, राइट? ऐसा सिखाते हैं ना, पहले ही दे दिया इल्यूजन माया का डोज। अरे माय सेल्फ आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, कृष्णा दास, ये सिखाना चाहिए, लेकिन उल्टा ही सिखाते हैं। तो ये पहला आसक्ति शरीर के प्रति। दूसरा आसक्ति उन लोगों के प्रति जो शरीर से जुड़े हुए हैं, रिश्तेदार, परिवार, पड़ोसी, दोस्त, वो सब लोग जो शरीर से जुड़े हुए, माता पिता, बहन भाई, पति पत्नी, बच्चे, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, काका काकी, दादा दादी, ए बी सी डी, इतने सारा लिस्ट है भाई, इतने आसक्त है उनसे। ये दूसरा आसक्ति। तीसरा आसक्ति वो वस्तु ऑब्जेक्ट्स जो शरीर से जुड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग लैंड ऑफ बर्थ, इंक्लूडिंग देश। ये तीसरा आसक्ति, देशभक्ति, देश प्रेम, ये वो सब वस्तु। हमारे घर में इतने सारे वस्तु है, एक भी चीज हम जाकर उठा के फेंक सकते हैं पर कितना दर्द हो, राइट? आप कोशिश करो आज उठाओ ये तो यूज हो जाएगा, अगले महीने तक यूज हो जाएगा। तीसरा उठा तो अगले जन्माष्टमी में यूज हो जाएगा। तीसरा उठा बोला 10 साल बाद मेरा बच्चा इस्तेमाल करेगा इसको, फेंकते नहीं है क्योंकि आसक्ति रहती। दिवाली का क्लीनिंग होता है घर पे, क्या करते हैं सब सामान एक ड्रावर से निकाल कर दूसरे ड्रावर में डाल दिया, हो गया क्लीनिंग। मतलब उठा के फेंको, इसको ट्रांसफर बोलते हैं, क्लीनिंग नहीं बोलते। एक बैग से उठा के दूसरा बैग, एक कपड़ से उठा के दूसरे कपड़, एक कोने से उठा के दूसरे कोने, क्यों रहता है आसक्ति? एक पिन भी मिला ना तब कभी तो कम में आएगा, इसको आसक्ति कहते हैं। अभी होता है घर वालों में, घर में होता है सबको होता है। और देश के प्रति आसक्ति, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, पता नहीं क्या क्या करते हैं, पागल हो जाते हैं, आसक्ति। आई एम भारतीय, करते तो कुछ नहीं, आई एम भारतीय नाम का। तो क्रिकेट के टाइम देशभक्ति याद आती है, बाकी देश की उन्नति में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, ये सब बकवास है। जो इतना क्रिकेट के पीछे है ना, नेक्स्ट ना पाकिस्तान में हो जाता है, उधर बैठ के इंडिया को गाली मारते, क्योंकि मरने के ना वही सोचेंगे ना, ऐसा ऐसा गलत है। और क्या है, पाकिस्तान इंडिया ही था पहले, कुछ सालों में एक बॉर्डर खींच लिया किसी राजनीतिक व्यक्ति ने, ब्रिटिश सरकार ने, और हम दुश्मन हो गए। ये क्या है, एक लाइन से दुश्मन ही हो गए, ये तो बहुत गलत बात है। इतना ही ज्ञान आपका कि एक लाइन मारा दुश्मन ही हो गए, वो भी लाइन किसने मारा, भगवान ने आके नहीं मारा, किसी विदेशी ने आके मारा, दो भाइयों में लाइन मार दिया, दुश्मनी हो गई, तो वो लोग खुश हो गए, हम लोग झगड़ा कर रहे हैं। तो बेवकूफी, कोई इतना शक्तिशाली है कि एक दो भाइयों में झगड़ा करके क्या लाइन मार, इतने सालों से वो भी जनरेशन जनरेशन क्यों झगड़ा करे मालूम ही नहीं, जनरेशन चल रहा है, इतना बेवकूफी है। तो क्या फायदा देश प्रेम का, राइट? वो भी हमारा ही देश था, अभी प्रेम चला गया, लाइन मारने का प्रेम आधा हो गया, लाइन भी बढ़ गई, लाइन से प्रेम लिमिटेड हो गया। तो चौथा आसक्ति है विज्ञान के प्रति। विज्ञान टेक्नोलॉजी कुछ नया नया बनाते हैं तो आ सकती है, कुछ नया टेक्नोलॉजी न्यूज़पेपर आते हैं तो पढ़ने की इच्छा होती है, नया आया है और समझता तो है नहीं तो आसक्ति बढ़ जाता है, मिस्टेरियस कुछ तो रहेगा चमत्कार। और पांचवा आसक्ति है धर्म की, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये धर्म मेरा, वो धर्म मेरा, ये धर्म पति धर्म, भाई धर्म, माँ धर्म, स्वधर्म, मैं ये हूँ, मेरा ये धर्म है। तो ये पांच आसक्ति हैं, ये पांच चेन हैं, जब तक ये नहीं कटेंगे ना वो आगे नहीं जाएगा, हम आगे नहीं जाएंगे। इसलिए भक्ति स्थान ठाकुर एक स्टोरी बताते हैं कि एक बारात था जो रात को नाव में बैठा और नाव वाले को बोला सुबह का मुहूर्त है उधर पहुंचा दो हमें, और सब लोग सो गए। सुबह उठे तो वहीं थे जहाँ पर, और नाव वाला चला रहे नाव, बहुत गुस्सा हो गए, बोले क्यों भाई आप सोए क्यों रात को, बोला मैं तो सोया नहीं मैं तो चला रहा था, लेकिन मुझे मालूम नहीं हम निकले क्यों नहीं इधर से, तो वह देखा रस्सी बंधी हुई थी, एंकर एंकर गिरा हुआ रहता है, तो रस्सी बंधा हुआ है नाव चला रहे तो कुछ फायदा नहीं। तो उसी तरह पांच रस्सी बंधे हुए हैं, फाइव अटैचमेंट्स, इनको काटना है ज्ञान की तलवार से, इनको काटना है, रस्सी को काटना है तो सुनकर काटेंगे, सुनना चाहिए भागवत, सुनना चाहिए भगवद्गीता, सुनना चाहिए पढ़ना चाहिए, तो हम अपनी आसक्ति काटेंगे। परीक्षित महाराज को जब श्राप मिला कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, तुरंत सब कुछ छोड़ दिया और गंगा किनारे एक कपड़े में बैठ गए, सब आसक्ति काट दिया तुरंत। राजा थे, महाराजा, हजारों राजा उनके अधीन थे, सेना, शस्त्र, हाथी, घोड़ा, रथ, रानियां, महल, गहने, ट्रेजरी, कपड़े, माता पिता, आई मीन रिश्तेदार, और देश प्रेम, खुद ही देश चला रहे थे। कितना आसक्ति होना चाहिए, लेकिन ऑन द स्पॉट सब कुछ छोड़ दिया और गंगा किनारे आकर बैठ गए और भागवत में। तो ये आसक्ति हमें काटना चाहिए, ज्ञान की तलवार से काटना चाहिए, नहीं तो हम फंसे रहेंगे इधर ही, नाव चलाते रहो लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर हम अच्छा जप कर रहे हैं, अच्छा भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आसक्ति तोड़ने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अटक जाएंगे। इसलिए गलत आसक्ति, गलत जो भी है धारणाएं, वो सब तोड़ देना चाहिए और भगवान से आसक्त होना चाहिए, उनके शुद्ध भक्तों से आसक्त होना चाहिए। उस आसक्ति से मुक्ति का द्वार खुल जाता है। किसी वस्तु या व्यक्ति से आसक्ति से बद बंध जाते हैं, लेकिन भक्तों के आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। तो मन को आसक्ति चाहिए अगर, तो भक्तों से आसक्ति, भगवान से आसक्ति, सेवा करो साधु, उनसे आसक्ति करेंगे तो हमारा मुक्ति का द्वार खुलेगा। कपिला मुनि कहते हैं देवहूति, वही आसक्ति जो हमें फंसाती है हमें निकाल भी सकती है, वही आसक्ति अगर हम भगवान के शुद्ध भक्तों से आसक्ति करेंगे, अगर हम भागवतम से आसक्ति करेंगे, पढ़ाई में आसक्ति करेंगे, चैंटिंग में आसक्ति करेंगे, सेवा में आसक्ति, कीर्तन में आसक्ति करेंगे, भगवान से जुड़ी किसी भी चीज़ से आसक्ति करेंगे तो हम बच जाएंगे। तो मस्ती सरसों ने जैसे कहा है वो ना उधर का उधर ही रहे, आगे नहीं बढ़ेगा। तो अगर आगे बढ़ना है तो ये आसक्ति तोड़ना चाहिए। नाम अपराध, 10 नाम अपराध में एक नाम अपराध आखिरी वाला कौन सा है, टू मेंटेन मटेरियल अटैचमेंट। सुन, बार बार सुनने के बाद भी अगर हम आसक्ति बनाए रखें तो ये अपराध है, तो आसक्ति हमें कम करना चाहिए, नहीं तो जीवन में बहुत दुख होगा। क्योंकि जिस जिस वस्तुओं के साथ हम आसक्त हैं, समय के अनुसार वो वस्तु तो खत्म होने वाले हैं, परमानेंट तो है नहीं कोई। तो जो जो वस्तु से हम आसक्त हैं वो सब हमको दुख देने वाले हैं, जो जो व्यक्ति से हम आसक्त हैं वो सब हमको दुख देने वाले पुरुष हैं, फिक्स। क्योंकि एक दिन वो खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे समय के अनुसार। और उस दिन हमको दुख होगा। जो भी नया वस्तु हम खरीदते हैं, नया मोबाइल खरीदते हैं, कितना खुशी होता है, फिक्स है 2 साल बाद ये दुख देने वाला है, उसी दिन फिक्स हो जाता है कि जब दिन खराब होगा तो दुख चालू होगा। हर वस्तु हम खरीदते हैं फिक्स हो जाता है, या जो वस्तु आज खुशी दे रही है वो वस्तु दुख दे रही है। हर रिश्ता जो हम बनाते हैं फिक्स हो जाता है, इस रिश्ते से आज जो आनंद मिल रहा है वे रिश्ते से हमको दुख मिलने वाला है, फिक्स है। तो ये आसक्ति बनाना ही क्यों, तो भगवान की सेवा को ले। भगवान के साथ आसक्ति बनाओ कभी दुख नहीं होगा, भक्तों के साथ कभी दुख नहीं होगा, लेकिन बाकी सब दुख होगा। तो आसक्ति से लैमेंटेशन हिरण्यकशिपु का यही स्थिति है, और दुख में व्यक्ति बरोबर सोच नहीं सकता, सही निर्णय नहीं ले सकता। हिरण्यकशिपु गुस्से में है और दुख में है, और इसमें उसने भगवान को अपना दुश्मन बना दिया, गलत निर्णय ले लिया, और इस गलत निर्णय के कारण उसका ये दुश्मन ही चलता रहा। दुख में गुस्से में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो भावनाएं इतना प्रबल होती हैं कि उस समय कोई निर्णय ले लिया तो वो अंदर चला जाता है, फिक्स हो जाता है, और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को सतोगुण में काम करना चाहिए, शांत मन से, कूल नेचर से, अच्छे प्रकृति से निर्णय लेना चाहिए कि जीवन में क्या करना है, इससे हम बहुत सारे गलत पापों से बच जाए। गलत निर्णय ले लिया उसके बाद पाप करेंगे हम, गलत कार्य करेंगे, अधर्म करेंगे, फिर पाप के कारण दुखी या दुख आएगा, फिर दुख में और पाप पकड़ेंगे और गलत निर्णय लेंगे, तो ये साइकिल चलता रहेगा जन्म मृत्यु का। इसलिए सात्विक रहना चाहिए, सात्विक जीवन जीना चाहिए, सात्विक लोगों के साथ दोस्ती करना चाहिए, तो इससे हमारा जीवन बहुत शांत है। ठीक है, श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद की
जय,
हिरण्यकशिपु की
जय।
कोई बात इससे कोई प्रश्न है तो पूछ। हाँ बोल।
सामीप्य और सालोक्य में अंतर क्या है?